Hare Krishna, this is our great fortune to hear once again His Grace Mohan Rupa Prabhuji on all auspicious day of the disappearance day of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj disappearance day, and this is dated on 3rd of November 2014 at ISKCON Dwarka, New Delhi. And today also we have got the first day of Bhishma Panchak in Kartik Mas, and also we are celebrating Ekadashi. Hare Krishna.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda. Bole Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का ये प्रणाम मंत्र है, आप कोशिश करिए दोहरा सकते हैं अगर पीछे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मैं गौर किशोरदास बाबा जी के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ जो साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं एवं कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम वह विरह भाव में ही सदा निमग्न रहते हैं। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर के गुरु थे, यानी कि हमारे क्या गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, राइट। और उनके जो गुरु महाराज हमारे क्या हैं, परम इष्टी गुरु हैं। तो इस तरह से और उनके जो गुरु महाराज हैं वो क्या है, परम 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 परमेष्ठी गुरु है, परम परमेष्ठी गुरु है। तो इस तरह से ये गुरु परंपरा है हमारी। और चैतन्य चरितार्थ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त गणों में वैराग्य प्रधान है। तो ये एक भक्ति का एक बहुत बड़ा भक्ति का एक आनुषंगिक फल है, एक बाय प्रोडक्ट है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयन हैतुकम। ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न होता है भक्ति से, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। वैराग्य और ज्ञान ये भक्ति से उत्पन्न होना चाहिए। यदि हम वैराग का पालन तो बहुत कर रहे हैं, वैराग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ऐसे वैराग को क्या कहा जाएगा, शुष्क वैराग कहा जाएगा, या फिर मर्कट वैराग्य कहा जाएगा, श्मशान वैराग्य जिसको कहते हैं। श्मशान वैराग्य क्या होता है कि जब किसी के घर में मृत्यु होती है, श्मशान घाट जाते हैं तो विरक्ति बहुत आती है, संसार से बहुत विरक्ति आती है, लगता है सब कुछ नश्वर है, यही सब कुछ धरा रह जाएगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद कुछ ही समय में सब भूल जाते हैं, इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, तरह तरह की वैराग्य है, फल्गु वैराग्य। फल्गु एक नदी है नेपाल में, फल्गु नदी। तो फल्गु नदी का रंग जो है बिल्कुल ऐसा ही होता है, गेरुआ रंग होता है, और ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सब्सटेंस है उसमें, जैसे माया दावने ने हस्तिनापुर में ऐसा फर्श बनाया जो देखने में जल जैसा लगता था, या ऐसा स्थान बनाया जो जो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन जो वहां पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही पांव रखा तो क्या हुआ, पानी में गिर गए। फर्श समझा उसको लेकिन पानी में अंदर चले गए। तो उस द्रौपदी ने हंसे ही नहीं, हंसे ही तो नहीं वर्णन मिलता महाभारत में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये जो फल्गु नदी बिल्कुल ऐसे ही, तो देखने में वो लगता है ये जैसे जो वेश होता है संन्यास का या ब्रह्मचर्य का, तो उस तरह का देखने में लगता है, लेकिन उसके अंदर आप पाँव रखोगे तो अंदर चला जाए। तो इस तरह ये जो स्मशान वैराग्य है या फल्गु वैराग्य है, इस तरह का जो वैराग्य है वो समय लंबे समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस नहीं होता उसमें, क्योंकि उसमें भक्ति का कोई वास नहीं है। मायावादी सन्यासी जो है श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कहते हैं कि मायावादी सन्यासी भी इंद्र तृप्ति का परित्याग करते हैं, और जो भक्त है वो भी इंद्र तृप्ति का परित्याग करते हैं, लेकिन अंततः क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि मायावादी तो कृष्ण का भी परित्याग कर देते हैं, भक्ति का भी परित्याग कर देते हैं, लेकिन भक्त तो कभी कृष्ण का परित्याग करते नहीं है। तो ये वैराग्य का जीवन जो है, कोई कह सकता है हम तो गृहस्थ आश्रम है, हमारे लिए नहीं है वैराग्य का जीवन, आप सबके लिए है जो मंदिर में ब्रह्मचारी है सन्यासी है उनके लिए है वैराग्य जीवन। नहीं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त जितने भी थे, वो गृहस्थ आश्रम में हो या फिर ब्रह्मचारी आश्रम में हो, वो सब वैरागी थे। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें वैराग्य का जीवन बिताना है, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते हुए हमें वैराग्य का जीवन बिताना है। ये शिक्षा, ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है। तो श्रील गोपकृष्ण बाबा जी महाराज, जिनके बारे में यह बताया कि साक्षात वैराग्य मूर्त है, साक्षात वैराग्य मूर्ति है श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और किसी तरह का जो है वो मर्कट वैराग या फल्गु वैराग या शुष्क वैराग, किसी इस तरह का जो नकली वैराग है उसको वो सहन नहीं कर सकते हैं बाबा जी महाराज। और इसलिए बाबा जी महाराज के बारे में सज्जन गोष्ठी में ये आर्टिकल आया था 1919 में, और इसमें बाद में जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के जो शिष्य हैं उन्होंने इसको एक बायोग्राफी के रूप में भी प्रेजेंट किया था, परम गुरु श्री गौर किशोर 1934 में। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से उन्होंने सीधे सुना था उनके शिष्यों ने, और उन्होंने एक पुस्तक छापी थी परम गुरु श्रील गौर किशोर। तो ये उसी पुस्तक से हम वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से बाबा जी महाराज का जो जन्म है, आविर्भाव जिसको कह सकते हैं, 1838 में हुआ था और 1915 में उनका तिरुभाव हुआ, यानी आज के दिन उत्थान एकादशी के दिन। उत्थान एकादशी बहुत ही पवित्र दिन है, बीज पंचक भी आज प्रारंभ हो गया है, और बहुत कठोर तपस्या करते हैं भक्त लोग। कार्तिक का जो मास है, अंतिम जो 5 दिन है, बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, और इसमें भक्त जो है बहुत घोर तपस्या करते हैं। जो भीष्म पंचक का व्रत रख लेता है उसको संपूर्ण चातुर्मास्य का व्रत का लाभ मिलता है। चातुर्मास्य 4 महीने जो व्रत रख रहे हैं भक्त लोग, अगर नहीं रख पाते हैं, अगर अंतिम 5 दिनों में रख देता है कोई, तो उसको पूरे चातुर्मास्य का लाभ मिलेगा। भीष्म पंचक इतना पावरफुल है, ये जो 5 दिन है आखिर के। तो कार्तिक मास बड़ा ही लाभदायक है, और यहाँ तक बताया श्रीमद् भागवतम का अगर कोई एक श्लोक भी अगर पढ़ता है श्रीमद् भागवतम का, तो उसको 18 पुराणों का जो अध्ययन का जो लाभ होता है वो मिल जाता है, एक श्लोक का केवल पाठ करने से, श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का पाठ करने से। तो इस तरह से एक कार्तिक का मास जो है बहुत ही पवित्र है। उत्थान एकादशी यानी कि देवतागण जो है वो 4 महीने से विश्राम कर रहे हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, देवता तो भी जो है इस तरह से जागरूक हो जाते हैं सब, और भगवान जो है 4 महीने से जो शयन में चले गए। शयना एकादशी से लेकर ये उत्थान एकादशी तक भी कई भक्त जो है चातुर्मास्य का व्रत रखते हैं। जो चातुर्मास से प्रारंभ होता है कई लोगों के लिए एकादशी से एकादशी तक, तो कई लोगों के लिए एकादशी चातुर्मास से संपन्न हो जाए, क्योंकि चातुर्मास से आज पूरा होगा तभी तो भीष्म चक्र रख पाएंगे ना, तो इस कारण से एकादशी से एकादशी से रखते हैं। हर भक्तिलास में दो प्रोविजन दिए गए हैं, एक तो शयन एकादशी से उत्तान एकादशी तक और या फिर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। अभी जो पूर्णिमा आएगी कार्तिक पूर्णिमा जिसको कहते हैं, तो यहाँ तक जो है भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कई लोग चातुर्मास का व्रत तोड़ते हैं। तो भीष्म पंचक बहुत ही कठिन है, लेकिन इसमें यह भी बताया जाता है कि एक दिन जो है गोबर खाया जाता है आधा चम्मच, और उसके अगले दिन जो है फिर दूध हो गया वो भी उतना ही, फिर दही हो गया, गोमूत्र हो गया, पंचगव्य जितने भी हैं वो सब थोड़े थोड़े लिए जाते हैं, और अंतिम दिन पांचवे दिन क्या करते हैं जो ब्राह्मण हैं उनको खूब प्रसाद खिलाया जाता है। इस तरह से व्रत तोड़ा जाता है, फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये कई भक्त कर रहे हैं वृंदावन में, हमारे श्रीपाद इंद्र प्रभु जब तक वृंदावन में रहे वो तब तक तो चातुर्मासी भी कर रहे थे और भीष्म पंचक भी कर रहे थे, श्रीपाद इंद्र प्रभु करते थे। और ये भी कहा जाता है कि चार महीने अगर कोई दूध का सेवन नहीं करता, 4 months अगर दूध का सेवन नहीं करेंगे, कोई अगर दूध का मिष्ठान दूध का आइटम नहीं खाएंगे तो उसको गोलोक धाम गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। ये सब बात सही है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, श्रवण कीर्तन भक्ति, क्योंकि अगर ये भक्ति नहीं है श्रवण कीर्तन नहीं है केवल हम फास्टिंग करेंगे तो तब भी लाभ नहीं मिलेगा। तो एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि देह की आवश्यकताओं को कम करते हैं और आत्मा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। तो श्रील गौर कृष्णदत्त बाबा जी महाराज के ज्वलंत उदाहरण है, और उनका जो वैराग है वो भक्ति के ऊपर आधारित है, उनका वैराग जो है वो भक्ति से उत्पन्न हुआ है। विप्रलंब रसाम बोधे, विप्रलंब रसाम बोधे का मतलब है विप्रलंब रस के सागर, विप्रलंब जो फियर फीलिंग ऑफ सेपरेशन विरह जो उनको महसूस हो रहा है श्री कृष्ण से, इस कारण से उनका वैराग इतना है। जितना आपका आकर्षण होगा कृष्ण से उतना वैराग होगा इस संसार से, और जितना आकर्षण होगा माया से उतना दूर रहेंगे हम कृष्ण से। तो ये परीक्षा है, हम अगर अब परखना चाहते हैं खुद को कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो एक जगह बैठ के थोड़ा सा ध्यान लगाएं और देखें हमारा आकर्षण माया की तरफ ज्यादा है, उस ओर है, सड़क के उस पार है या सड़क के इस पार है, कहां पर हमारा मन है, कथा के दौरान हम लोग कहां ध्यान लगाए बैठे हैं, कि घर जाने की चिंता है संसार की चिंता है अभी, इसका मतलब यह है कि अभी माया से विरह है, और घर में रहते हुए कृष्ण से विरह हो रहा है, मंदिर जाने की चिंता हो रही है, भक्तों के संग करने की चिंता हो रही है, तो इसका मतलब हम कृष्ण से आकर्षित हुए हैं। तो बाबा जी महाराज निरंतर क्योंकि कृष्ण से विरह महसूस कर रहे थे, इसलिए इस संसार के बारे में इस देह के बारे में कोई सुध नहीं थी श्री लघुवर किशोरदास बाबा जी महाराज की। तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, तो और इसमें छोटी छोटी घटनाएं हैं वो आपको बताएंगे, बहुत सारे स्टोरीज हैं जो श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। तो इनका जो जन्म करीब इसमें जो बताया गया है 1838 में हुआ था, तेपाखोल ये एक स्थान है वग्यन नाम के गांव के पास, और ये पद्मा नदी के पास, और ये फरीदपुर जिले में बंगाल में श्री गौरचंद्र बाबा जी महाराज एक वैश्य परिवार में यानी कि बिजनेस फैमिली में उनका जन्म हुआ था, और छोटी उम्र में ही जो है उनका विवाह कर दिया गया था, और 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, छोटी उम्र में छोड़ दिया घर। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने यहां तक बोला है कि कौन कहता है कि स्वरूप दामोदर अभी नहीं है, गदाधर पंडित अभी नहीं है, मैं तो उनको अभी भी नवदीप की सड़कों में देख रहा हूं, वही स्वरूप दामोदर जो है बाबा जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए हैं, और वही गदाधर पंडित अब श्रील भक्ति और ठाकुर के रूप में स्वानंद सुखद कुंज में वास कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर कहते हैं दिस इज माई हार्ट फेल्ट कन्विक्शन, मैं इसलिए इसके लिए बहुत कन्विंस्ड हूँ, पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि ये जो वैष्णव है अभी भी है और नवदीप धाम में अभी भी भ्रमण कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने जो है बाबा जी वेश लिया था, भागवत दास बाबा जी महाराज से उन्होंने बाबा जी वेश लिया था। थोड़ा बहुत हम बाबा जी वेश के बारे में बताना चाहते हैं। बाबा जी वेश ये परमहंस वेश है, राइट? इसको वैष्णव भेद भी कहते हैं। परमहंस की स्थिति में कोई बाबा जी वेश, श्रील भक्ति ठाकुर ने भी 1908 में बाबा जी वेश स्वीकार किया था। और ये जो बाबा जी वेश है, वास्तव में बाबा जी जो वर्ड है किसी शास्त्र में नहीं पाया जाता, किसी शास्त्र में वर्ड है ही नहीं बाबा जी का, लेकिन इस तरह से पुकारा जाता है। जो परमहंस होते हैं उनको बाबा जी करके बुलाते हैं, बाबा जी महाराज करके बुलाते हैं, लेकिन इसकी नकल नहीं की जा सकती। क्योंकि देखिए, जब तक श्रील भक्ति ठाकुर ने लिखा चैतन्य शिक्षावृत में, जब तक हम बद्धावस्था में हैं तब तक हमें क्या करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर हमें क्या करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। अगर हम बद्धावस्था में हैं जब तक, तब तक हमें क्या करना चाहिए, साधना करनी चाहिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहे। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रहकर अगर साधना नहीं करेंगे तो ऐसी साधना का कोई विशेष लाभ मिलेगा नहीं, हमारा शुद्धिकरण होगा नहीं। बद्ध जीव के लिए वर्णाश्रम धर्म में रहने से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और ऐसे प्यूरिफिकेशन में जब साधना की जाती है तो ऐसा साधक जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। क्योंकि जो बाबा जी वैश्य है ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर होते हैं, यानी कि परमहंस की स्थिति में होते हैं, यानी कि इनको पूरा आभास हो गया है या उनको पूरा साक्षात्कार हो गया है कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी, क्या हूं मैं, गोपी भर्तुर पदकमले हो दास दासानुदास। कि जो गोपियों के भर्तु हैं कृष्ण, उनके दास का दास का दास का दास का दास हूं। तो इस प्रकार का जब इस प्रकार की पहचान हो जाती है हमें और इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है, तब जाके जब कोई ये बाबा जी वेश ले सकता है परमहंस वेश। तो शिलक वक्ष बाबा जी महाराज बहुत इस बात पे कड़क थे। नवदीप ऐसे कई तथाकथित बाबा जी और तथाकथित भक्त आते थे जो अपने को परमहंस प्रस्तुत करते थे, बाबा जी महाराज सबकी पोल खोलते थे। बाबा जी महाराज हालांकि भजनानंदी थे, भजनानंदी का मतलब होता है जो कभी ग्रंथ नहीं लिखते हैं, जो कभी कथा नहीं करते हैं और जो कभी शिष्य नहीं बनाते, उनको भजनानंदी कहा। तो करते क्या है फिर, वो केवल वो भजन करते हैं, भजन में ही आनंद इतना लेते हैं कि उनको इन सब के लिए समय रहता ही नहीं है। लेकिन बाबा जी महाराज से जब भी कोई पूछने आता था तो वो बताते थे कि वास्तव में कौन असली है कौन नकली है। तो बाबा जी महाराज इस तरह से जो है सबकी पोल खोला करते थे। तो इस तरह से वो कई कुछ समय के लिए वृंदावन धाम में भी रहे थे। वृंदावन धाम में, ब्रज मंडल में, द्वादश वनों में भी वो भटकते रहे। लगभग 30 वर्षों तक वृंदावन धाम में भी उन्होंने भजन किया और कभी कभी वो नवदीप भी जाते थे। और कुछ समय के बाद 1894 में, 1894 में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अनुमति लेकर उन्होंने वृंदावन धाम से क्या किया, नवदीप धाम में प्रवेश किया। नवदीप धाम में अब वो हमेशा के लिए रहना चाहते थे। तो इस प्रकार वो क्या करते थे, नवदीप धाम में जब आते थे तो क्या करते थे, वो भिक्षाटन करते थे और मधुकरी करते थे। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरताय की जय। और इस सारे जो थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा करते थे, प्रसाद इकट्ठा करते थे, और उसके बाद फिर कई बार तो वो क्या करते थे, कुछ अन्न भी मधुकरी में ले लेते थे और उसको फिर स्वयं ही पकाते थे, स्वयं ही उसको कुकिंग करते थे। और उसके बाद फिर क्या करते थे, रास्ते में जो लकड़ियाँ उपलब्ध होती थी कहीं ना कहीं लकड़ी उठा के लाते थे। और गंगा जी के तट पर कई लोग जो बर्तन फेंक देते थे, पुराने बर्तन फेंक देते थे, उन बर्तनों को लाते थे, धोकर लाते थे, उस बर्तन को इस्तेमाल करते थे। और वस्त्र कैसे इस्तेमाल करते थे, वस्त्र कौन से होते थे उनके पास, वो श्मशान घाट में जाते थे, जो मृतक शरीर के ऊपर जो वस्त्र डाले जाते थे वो वस्त्र लाते थे, उसको धो के जो है उसी वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। ऐसे परमहंसों की नकल नहीं की जा सकती है। हम सोचेंगे हम भी ऐसे करेंगे तो तुरंत ही हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए ये बाबा जी महाराज क्योंकि परमहंस के स्तर पर थे, तो इसलिए वो साधारण जो सामाजिक जो नियम है उनसे ऊपर उठे हुए थे। तो इस तरह बाबा जी महाराज जो है वो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए ठाकुर भक्तिनोद के पास जाते थे। भक्तिनोद ठाकुर को उन्होंने अपना शिक्षा गुरु माना था। आप सोच के देखिए भक्तिनोद ठाकुर की क्या ऊंची स्थिति है कि स्वयं बाबा जी महाराज आते थे उनसे सुनने के लिए। भक्तिनोद ठाकुर हालांकि उनका इतना बड़ा परिवार था, बाद में जब वो रिटायर हो गए थे और फिर स्वरूपगंज में स्वानंद सुखद कुंज उन्होंने अपना वहाँ भजन कुटीर बनाया था और वहीं पे रहने लगे थे। सुरभि कुंज में भी रह रहे थे कुछ समय के लिए। तो वहाँ पर स्वानंद सुखद कुंज में ठाकुर भक्तिनोद रोज 2 से 5 बजे तक दोपहर में भागवत कथा करते थे और बाबा जी महाराज रोज आते थे उनके पास। कोलब द्वीप से गंगा जी पार करके आया करते थे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। तो ये वो समय था जब 4 महान आचार्य एक साथ थे, यानी कि श्रील भक्तिनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और कौलद्वीप में श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और श्रीधाम मायापुर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरित ठाकुर। तो 4 महान आचार्य जो हमारे परंपरा में वो एक साथ नवद्वीप में वास कर रहे थे। इसका क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है कि नवद्वीप धाम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि चारों के चारों महान आचार्य, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली हुई थी और उसी स्थान में श्रील प्रभुपाद जी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा। तो ये इस तरह वो प्रत्येक दिन जाते थे और उनके पास कुछ नहीं था, उनकी अपनी कोई संपत्ति तो थी नहीं। कंठी माला पहनते थे और हाथ में तुलसी की जप माला होती थी और कई बार तो कंठी माला भी नहीं होती थी गर्दन में, गले में, और कई बार तो वो जप माला भी इस्तेमाल नहीं करते थे। कपड़ा जो होता था उसमें ही नॉट्स बांध देते थे और उसी से वो संख्या गिनते थे। तो इस तरह से बड़े ही अद्भुत कार्य, यानी कि जैसे अवधूत की तरह बाबा जी महाराज रहा करते थे परमहंस होने के नाते कारण। और विशेष रूप से 2 ग्रंथ उनको बहुत प्रिय थे, नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। और बाबा जी महाराज कहते थे कि अगर आपके पास 2 पैसे हो तो जाइए दुकान, जाइए 2 ग्रंथ खरीदिए, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे बहुत सुंदर ग्रंथ है। और उनका ये था कि भाव ये था कभी वो सेवा नहीं स्वीकार करते थे किसी, क्योंकि विरक्त लोगों का ये होता है कि वो सेवा नहीं लेते किसी, और सेवा लेने पर बहुत दुखी होते हैं। किसी से भी सेवा लेते हैं तो हृदय से बड़ा दुख होता है कि मैं इनसे सेवा ले रहा हूँ, उनसे सेवा ले रहा हूँ। तो बाबा जी महाराज तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कोई भी सेवा करने के लिए आता था तो उनके साथ बहुत कड़की से पेश आते थे ताकि वो दोबारा उनके पास ना आए। वैष्णव देखिए विग्रह की सेवा करना बड़ा आसान है लेकिन वैष्णव की सेवा करना बड़ा कठिन, वैष्णव की सेवा करना इतना आसान नहीं है। तो वैष्णव तो बहुत परीक्षा लेते हैं, इसलिए बाबा जी महाराज के पास कोई बड़ी आसानी से कोई इनकी सेवा नहीं कर पाता था। और बाबा जी महाराज जो है ब्रज लीला में गुणमंजरी है, गुणमंजरी ब्रज लीला में राधा रानी की सेवा में हमेशा अनुरक्त है। और कभी कभी उनके पास जो है टोकरी भी होती थी और जो टाइगर स्किन जो उसका कैप कभी कभी पहनते थे, जो टाइगर स्किन का जो कैप है वो बाबा जी महाराज कभी कभी पहन करते थे, और बड़ा ही अद्भुत होता था उनका जो वेशभूषा वगैरह जो है। और इसके अलावा 1901 जनवरी को श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा दी थी स्वानंद सुखद कुंज में। तो बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए क्यों आए, क्योंकि श्रील भक्तिनोद ठाकुर ने कहा जाओ आप बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने समय के सबसे बड़े विद्वान पुरुष, उनसे बड़ा विद्वान कोई था नहीं, वैदिक शास्त्रों में भी दक्ष थे, शास्त्र का अध्ययन और शास्त्र में इतने पारंगत थे और वैदिक एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अपने जमाने में भी स्कूल्स में कॉलेजेस में जो जाते थे संस्कृत कॉलेज में तो क्लासेस कम अटेंड करते थे, लाइब्रेरी में ज़्यादा रहते थे, लाइब्रेरी में जाके सारी किताबें वहाँ जाके पढ़ते थे। इसलिए यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रोफेसर होते थे, इवन हेडमास्टर जो उनके होते थे, इवन स्कूल लेवल पर भी उनको चैलेंज करते थे, उनके साथ डिबेट करते थे और कई बार उनको परास्त करते थे। एक बार एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिबेट हुआ था, एस्ट्रोनॉमिकल डिबेट हुआ था जिसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने सभा में उस व्यक्ति को परास्त किया सबके सामने, और सबके सामने जो है उसने यूरिनेट किया था डर के कारण, भय के कारण। तो इतने बड़े स्कॉलर थे श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरन ठाकुर। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि शिष्य जब कितने महान होते हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धार्थ सिंह ठाकुर को भक्तिरण ठाकुर कहते हैं। दीक्षा अगर आप लेनी है तो बाबा जी महाराज से। बाबा जी महाराज जो है बेसिकली इलिटरेट थे, इन द सेंस कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो सारे वैदिक शास्त्र उनके जीवा में होते थे, उनकी वाणी में होते थे। मतलब बोलते तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक अनपढ़ है, लिख नहीं पाते, अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे। और ऐसे महान पुरुष यानी कि वैष्णव के पास भेजा था भक्तिरण ठाकुर ने अपने सुपुत्र को, जाओ बिमला प्रसाद उनसे जाके दीक्षा लो आप। क्योंकि संसार को दिखाना चाहते थे कि वास्तव में भौतिक विद्वता, मेटीरियल एजुकेशन, मंडेन एजुकेशन आध्यात्मिक ज्ञान के सामने और कृष्ण भक्ति के सामने बिल्कुल तुच्छ है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। उसका महत्व तभी है जब उसको कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। तो फिर बाबा जी महाराज के पास जब गए भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर गए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं और किसी से दीक्षा नहीं लूंगा, और मुझे पिताश्री ने भेजा है, ठाकुर भक्तिरोध ने भेजा है आपकी शरण लेने के लिए। तो बाबा जी ने महाराज कहा कि ठीक है, मैं चैतन्य महापुरुष से पूछ के बताऊंगा। तो बाबा जी महाराज को कन्विंस करना इतना आसान नहीं था। तो बाबा जी महाराज जो है कहते हैं कि मैं चैतन्य महापुरुष से पूछ के बताऊंगा। और जब दूसरी बार गए तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं पूछना भूल गया, पूछना भूल गया हो। तो इस बार श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर बहुत चिंता में पड़ गए। उन्हें कहा कि मैं देह का त्याग कर दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो, है ना। और उस बहुत बहुत ज्यादा बेचारे व्याकुल थे। तो फिर तीसरी बार जब गए तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैंने चैतन्य महापुरुष से पूछा, जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वास्तव में ये भौतिक विद्वत्ता जो है और जो भौतिक नैतिकता जो है, मोरालिटी, मंडेन मोरालिटी है, एकेडमिक स्कॉलरशिप है, ये सब वास्तव में भक्ति के सामने, आध्यात्मिक ज्ञान के सामने बिल्कुल तुच्छ है, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो फिर जब श्रील भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर ने जब सुना ये बात, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे पर आप कृपा नहीं करेंगे तो मैं अपना देह त्याग देता हूँ आज ही। श्रीपाद रामजाचार्य ने भी अपने गुरुदेव गोष्ठी पूर्ण के पास 18 बार गए थे दीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर भी यही घटना घटी है। तो बाबा जी महाराज फिर आखिर में जब देखा कि कितने व्याकुल हैं बिमला प्रसाद दीक्षा लेने के लिए, और उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा श्री वार्ष भानवी दैत दास। बहुत सुंदर नाम दिया, श्री वार्ष भानवी दैत दास। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, वार्ष भानवी का मतलब क्या है? श्रीमती राधारानी। और श्री वार्ष भानवी की प्रिया प्रिय सखी मंजरी कौन है? श्री रूप मंजरी है। उनके निकटतम जो उनकी सेविका है श्री रूप मंजरी है, उनके सेवक है कौन? नयनमणि मंजरी श्रील भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर। तो इसलिए उनका नाम दिया वार्ष भानवी दैत दास। तो राधारानी की प्रिय जो श्री रूप मंजरी है उनकी सेवा में रथ है मणि मंजरी। और श्रील भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर के बारे में जब एक शिष्य ने बता दिया कि मैंने देखा गुरुदेव, सपने में देखा मैंने कि आप मणि मंजरी हैं और राधारानी की सेवा में लगे हैं और आप वृंदावन में राधारानी के साथ सब जगह जा रहे हैं उनके लीला में सहयोग देने के लिए, तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज जब सुना तो वो मुस्कुराए। एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो मणि मंजरी है, नयन मणि मंजरी है, यानी कि राधारानी की नयन की मणि की मंजरी है, नयन मणि मंजरी है। और इस तरह तो राधारानी बहुत जो है हमेशा नयनमणि मंजरी को हमेशा अपने पास रखती है, निकट रखती है, ऐसा भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर ने चिट्ठी में बताया कि नयनमणि मंजरी करती क्या है। राधारानी के सदैव राधारानी के निकट रहती है और राधारानी हमेशा नयनमणि मंजरी को अपने पास रखना चाहती है आसपास। तो ये इस तरह बाबा जी महाराज जो है वो उन्होंने फिर भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर को दीक्षा दी, उनका नामकरण हुआ वार्ष भानवी दैत दास। वार्ष भानवी दैत दास उनका नाम पड़ा। तो इस प्रकार श्री बाबा जी महाराज जब नवदीप धाम में रहते तो उन्होंने कई जो ऐसे जो ढोंगी जो जैसे बाबा जी होते या ऐसे जो विषयी लोग होते जो नमायापुर में नवदीप धाम में आके रहना चाहते उनकी पोल खोलते। एक बार एक जो है क्या हुआ कि बाबा जी महाराज के पास एक जमींदार आया, एक व्यक्ति आया जो वास्तव में जमीन खरीदना चाहता था, जमीन एक करना चाहता था, छोटी सी जमीन खरीदना चाहता था भजन करने के लिए, भजन कुटिया बनाने के लिए। तो वहां पे एक कोई रानी थी जिसके पास बहुत सारी जमीन थी। तो जब वो जमीन के लिए खरीदने गया तो उसने बताया कि बाबा जी महाराज को कि मैं रानी के पास गया था और मैंने जमीन मांगी है उनसे ताकि मैं यहाँ भजन कुटीर बनाकर जो है यहाँ पर रह सकूं नवदीप धाम मायापुर में। तो बाबा जी महाराज ने कहा कि जमीन कब से रानी की हो गई। बाबा जी महाराज कहते हैं कि जमीन कब से रानी की हो गई, ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति भी लगा दो तब भी आप नवदीप धाम की धूलि की एक कण भी नहीं खरीद सकते हो। और ये तो बोल रहे हैं कि जमीन खरीदेंगे आप भजन कुटीर बनाएंगे, तो नहीं का भजन नवदीप धाम में भजन करने का ये तरीका नहीं है। जब तक हमारी आसक्ति विषय वस्तु में है, इंद्र तृप्ति में है, हम धाम में कभी भजन नहीं कर सकते हैं। जाओ भक्तों के संग में रहो, भक्तों के संग में रहकर संकीर्तन करो, दिन रात जप करो, भगवान के नामों का जप करो और संकीर्तन करो। भक्तों के संग में रहकर ही तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा धाम में रहने का, ऐसे आकर एकांत में रहकर तुम भजन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बाबा जी महाराज एक्चुअली बता रहे थे कि बाबा जी महाराज क्योंकि वो वास्तव में परमहंस थे तो वो जनरली बताते थे कि वास्तव में बाबा जी महाराज बाबा जी होने का मतलब क्या है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरनी ठाकुर से जब पूछा कि किस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए शिष्य की गुरु में, किस तरह की शिष्य की गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, तो श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने यही बताया था कि मैं क्या करूंगा, अपने गुरुदेव बाबा जी महाराज के चरण धूलि के कुछ कण लेके लाखों जीवात्माओं के ऊपर फेंकूंगा और सभी लाखों जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा, केवल मेरे गुरु महाराज के चरण धूलि के कण ही लेने मात्र से इन सबका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मेरे गुरु महाराज के चरण धूल लेने के लिए यहां तक बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी तक आते हैं अपने मस्तक पर धारण करने के लिए। ऐसा बोला तो बोलते हैं कि ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास होना चाहिए शिष्य को गुरु में। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ, एक और घटना है, कलकत्ता द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। तो क्या हुआ कि बाबा जी महाराज की आंखें लगभग चली गई थी, 1908 में बाबा जी महाराज को दिखाई नहीं देता था, लेकिन बाबा जी महाराज ऑफ कोर्स दिव्य चक्षु से सबको देखते थे। धाम को देखने वाले तो बाबा जी महाराज ही थे चिंतामणि धाम को, बाकी सबको आंखें होते हुए भी अंधेरे थे। इन नेत्रों के द्वारा, केवल इन मेटेरियल आईज के द्वारा हम धाम को नहीं देख सकते हैं। तो बाबा जी महाराज के पास श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरनी ठाकुर आए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों नहीं करते, कलकत्ता जाएं, वहां पर हम इलाज करेंगे आपका। और भक्ति ठाकुर ने भी उनसे कहा कि हम आपको कलकत्ता लेके चलते हैं, वहां पर हमारे पास स्थान है, वहां आपको सेवक सेवा में भी किसी ना किसी को लगा देंगे, आपका अच्छा इलाज हो जाएगा, आप महाराज चलिए, बाबा जी महाराज चलिए कलकत्ता चलिए। तो बाबा जी महाराज ने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं गंगा जी में डूब पड़ता हूँ, गंगा जी में छलांग मार के डुबकी लगाता हूँ और आत्महत्या करता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तो मैं भूत बन जाऊंगा। तो ऐसे जब बोले तो तुरंत क्या किया, उन्होंने सरस्वती नदी की तरफ भागे, यानी कि वो जो सरस्वती नदी जो स्वरूपगंज यानी स्वर्ण सुगंधकुंज के पास जो बहती है नदी, वहां उस तरफ भागने लगे बाबा जी महाराज बड़ी तेजी से, और पीछे पीछे शिल भक्ति सिद्धार्थ सिंह ठाकुर के पीछे पीछे भाग गए। और भागते गए भागते भागते गए, अचानक क्या हुआ, बाबा जी महाराज जो है वहां से अदृश्य हो गए, इनविजिबल हो गए, और 45 दिन तक जो है अदृश्य रहे बाबा जी महाराज। और 45 दिन तक पता नहीं कहां चले गए, सरस्वती नदी के अंदर गए, कहां गए दिखाई नहीं दी, तो बहुत चिंता में पड़ गए। और उसके बाद फिर बाबा जी महाराज 45 दिन के बाद वापस आते हैं, कहते हैं कि आत्महत्या करने से तो मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं अभी शरीर नहीं छोड़ूंगा। 45 दिन के बाद आगे बात बताते हैं, बोलते हैं लेकिन एक बात मैं बता दूं आप सबको कि मैं किसी की सेवा नहीं ले सकता, इस बात को मैं सहन नहीं करूंगा। तो बाबा जी महाराज के लिए कोई किसी को भेजते नहीं थे उनके पास सेवा के लिए, क्योंकि डर था कि बाबा जी महाराज की आत्महत्या ना कर ले। तो इस तरह से बहुत स्ट्रिक्ट उनका जो है वैराग था, और एकादशी हर एकादशी वो निर्जल रखते थे और दिन रात वो जप करते थे महामंत्र का, और क्या करते थे कभी गंगा जी के तट पर जो मिट्टी होती थी उस मिट्टी को लेके खा लेते थे, और क्रैक राइस लेकर चावल इस तरह के जो सूखे चावल हैं क्रैक राइस लेकर उसमें उसको गंगा जल से धोकर उसमें कुछ काली मिर्च डाल के उसको खाया करते थे, ये उनका प्रसाद होता। तो इस तरह से बाबा जी महाराज जो एक्चुअली वास्तव में उस लेवल में थे, परमहंस थे। तो इसलिए 1903-1904 में बाबा जी श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर को अधोसज विष्णु का विग्रह प्राप्त हुआ था। जब योगपीठ का कार्य चल रहा था वहां पे जमीन खुदवाई जा रही थी, तो अधोसज विष्णु ये विग्रह जगन्नाथ मिश्र जी 500 साल पहले, जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताश्री, इस विग्रह की सेवा करते थे, वो विग्रह प्राप्त हुआ था जब वहां जमीन की खुदाई हो रही थी। और श्री भक्ति ठाकुर ने अपने सुपुत्र श्री भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर को यह दोष विष्णु दिया था। और बाबा जी महाराज काफी समय उस समय योगपीठ में बिताया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, रात्रि के 2 बजे बाबा जी महाराज कोलद्वीप से गंगा जी पार करके योगपीठ सीधा मायापुर आ गए। नाव तो थी नहीं अर्धरात्रि को, और समय कोई कोई घाट तो होता नहीं था ठीक से, तो गंगा जी पार करके कैसे बाबा जी महाराज रात को 2 बजे आ गए। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के पास जब पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी महाराज बोले कि आप गुरुदेव कैसे आ गए अर्धरात्रि को 2 बजे, आप कैसे आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, तो बहुत पूछने पर तो फिर बोले कि कोई एक व्यक्ति मुझे लेकर आया था। बोले रात को कौन लेकर आएगा आपको। बोलता अच्छा ये बात है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही आपको हाथ पकड़ कर लेके आए हैं। तो बाबा जी महाराज मुस्कुराए, कुछ कहेंगे। तो इस तरह से बड़े अद्भुत कार्य किया करते थे। और एक बार श्री भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर ने योगपीठ में सनातन गोस्वामी के द्वारा जो लिखित भरत भागवतावर्त है इसके ऊपर कथा की थी, और स्वयं बाबा जी महाराज अपने शिष्य के द्वारा जो है कथा सुनने के लिए वो आया करते थे। बाबा जी महाराज स्वयं आते थे। और एक बार की घटना है कि क्या हुआ कि एक बार बांग्लादेश से एक व्यक्ति आया, और वो बहुत धनी जमींदार था, लैंडलॉर्ड था वो, और वहां से आया था। वो अपने मित्र के साथ आया था बाबा जी महाराज से मिलने के लिए। तो मित्र ने बाबा जी महाराज को इंट्रोड्यूस किया कि हमारे मित्र हैं, जमींदार हैं, बांग्लादेश से आए हैं और बहुत एडवांस्ड है भक्ति में, हमेशा एक्सेसी में रहते हैं। और वो हमेशा एक्सेसी में रहते भी थे, आंसू बहाते थे, कंपन होता था उनके शरीर में, इस तरह के सिम्टम्स दिखाते थे भाव भक्ति के। तो बाबा जी महाराज के पास वो लेकर आए और बोले कि बाबा जी महाराज जी हमारे मित्र हैं, बांग्लादेश आए हैं, जमींदार हैं बहुत बड़े, और भक्ति में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, इनका संग करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, हमेशा एक्सेसी में रहते हैं, देखिए किस तरह से कांप रहे हैं, किस तरह से भाव के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से, और वास्तव में हुआ क्या था कि मेरे पास जब आए थे तो ये चैतन्य चरितामृत के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये पूछना चाह रहे थे मुझसे चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र राय का जो संवाद है उसकी गहराई तक जाना चाह रहे थे, उसके बारे में कई प्रश्न किए थे। तो मैंने उनको यही कहा कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, लेकिन सबसे बड़े विद्वान हमारे बाबा जी महाराज हैं, जिनको संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उनके पास हम चलते हैं, वही वास्तव में इस संवाद के बारे में इसकी गहराई तक जा पाए। तो बाबा जी महाराज के पास ही पहुंचे वहां पर। तो वहां जब पहुंचे तो बाबा जी महाराज से बोलते हैं कि बाबा जी महाराज ये रामायण संवाद के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि आप ही एक हैं जो इसके बारे में अधिक सबसे अधिक जानकारी रखते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इस रामायण संवाद के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जिस व्यक्ति के साथ आए हो, जिस दुष्ट व्यक्ति के साथ आप आए हो, इस ढोंगी के साथ आए हो मेरे पास, इस इम्पोस्टर के साथ आया हो, इस रास्कल को, इस रास्कल के संग को अभी से त्याग दो। अगर वास्तव में तुम रामायण संवाद को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इस ढोंगी का संग त्यागो, तुरंत त्यागो। तो वो हैरान हुए कि ये तो भाव भक्ति के सारे लक्षण प्रकट कर रहे हैं। बोलते हैं अगर ये भाव भक्ति के सारे लक्षण प्रकट कर रहे हैं तो इनको कहिए कि सबको त्यागें और गंगा जी के तट पर आए, और गंगा जी के तट पर आकर यहाँ पर कुटिया बनाए और भक्तों के संग में रहें और संकीर्तन करें। और आपकी बात है, आप क्या करिए, चैतन्य चरितामृत कम से कम 100 दफा पढ़िए, 100 टाइम्स आप चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करिए, भक्तों के संग में रहिए और भक्तों के संग में रहकर संकीर्तन करिए, तब आपको ये रामायण संवाद समझना है। तो इस तरह से बाबा जी महाराज को कहते हैं। तो इस तरह वो वास्तव में कई ऐसे जो ढोंगी बाबा जी, ढोंगी संत आया करते थे, उनका पोल खोलते थे और ये बताते थे कि भगवान जो है अपने आप को प्रकट करते हैं शरणागति के ऊपर निर्भर करता है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते स्थाम सते भजाम यहाँ, जैसे हमारी शरणागति होगी उतना अधिक जो है भगवान जो है रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसलिए निर्भर करता है कि हमारी शरणागति कितनी है, क्योंकि वास्तव में ये जितने लोग ये एक्सेसी दिखाते हैं जब कठिन परिस्थिति आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं, तो ये उसको सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भक्ति में ये लोग गंभीर नहीं है। इस तरह के जो है भाव भक्ति के जो लक्षण है प्रकट करते हैं पब्लिक में, समाज में, तो ये केवल एक दिखावा होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसाम सिंधु में भाव भक्ति के जो 9 लक्षण बताए हैं, उन 9 लक्षणों में, हालांकि बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन 9 लक्षण जो बताया रूप गोस्वामी ने, उसमें ये सब नहीं बताया उन्होंने, कंपन होना, रोना, ये सब नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि जो 9 लक्षण श्री रूप गोस्वामी ने बताए हैं, उन 9 लक्षणों की नकल कोई नहीं कर सकता। रोना तो कोई भी नकल कर सकता है, अगर आप मूवी स्टार्स को अगर बुला लें रोने के लिए, कहें 2 मिनट में रोके दिखा देंगे, आंसू बहेंगे आंखों में से, तुरंत रो देंगे वो। तो ये करते हैं, एक्टर्स करते हैं, उनके लिए 2 मिनट का काम होता है। तो इसलिए केवल रोना धोना और कंपन आना शरीर में, ये वास्तव में भाव भक्ति का केवल ये लक्षण नहीं है, और बहुत सारे लक्षण हैं जिनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कर रहे हैं। तो एक बार इसी तरह से एक भक्त आया था बाबा जी महाराज के पास, एक भक्त आया तो वो बहुत जो है एक्सटेसी में था और रो रहा था, आंखों से आंसू बहा रहा था और कंपन कर रहा था। बाबा जी महाराज कहते हैं कि बाबा जी महाराज ये बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है और हमेशा आंखों से अश्रु बहते हैं, इनके कंपन होता रहता है। तो बाबा जी महाराज उनके लिए यही बात बोले। बाबा जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो विवाहित जो स्त्री होती है वो कभी किसी गैर पुरुष के पास नहीं जाती है अपने अंग का प्रदर्शन करने के लिए। इस तरह से ये जो तथाकथित जो भक्त है बाबा जी हैं या अनुभाव भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है, वास्तव में भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता है। तो इस तरह से बाबा जी महाराज के पास कई लोग आते थे और बाबा जी महाराज की पोल खुला करते थे, लेकिन बाबा जी महाराज कभी भी कन्विंस नहीं होते थे इन लोगों से। और ऐसी बहुत सारी घटना है। और एक बार क्या हुआ कि एक बाबा जी महाराज एक धर्मशाला के एक लॉजिंग हाउस के एक वरंडा में, उसके एक कह सकते हैं कि बालकनी में बैठे हुए थे और वहां पे प्रसाद लेने के लिए बैठे हुए थे, तो अचानक उस समय उनकी आंखें भी नहीं थी, तो वहां पर एक सांप आ गया। और सांप आया तो एक निकट में कोई माता जी थी, स्त्री थी, वृद्ध लेडी थी वहां पर, तो आगे वो चिल्लाए बाबा जी महाराज सांप 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 बच के रहिए। तो बाबा जी महाराज क्या करते हैं, हाथ से ऐसे जोर से मारना शुरू करते थे जमीन पे। तो मारना जब शुरू करते हैं तो वो सांप तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो जो माता जी आगे कहते हैं कि बाबा जी महाराज ये आप क्या कर रहे थे, आप इतना जोर से हाथ को पीट रहे थे जमीन पर, कहीं सांप आपको काट देते तो क्या होता, और हम नहीं आपको यहां पर रहने देंगे, चलिए चलिए आप और किसी स्थान में रहिए हमारे साथ। तो बाबा जी महाराज कहते हैं आप तुरंत यहां से जाइए। बोलते नहीं नहीं सांप आपको काट लेगा, सांप की चिंता मत करो, नहीं नहीं सांप ने जो ये प्रसाद खा लिया होगा जहरीला हो गया होगा, हम आपके लिए जो है और चावल बनाएंगे। बाबा जी महाराज कहते हैं यहां से जाओ। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं हम चावल आपके लिए बनाने वाले हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं कि यहां मत आना दोबारा। तो बाबा जी महाराज की बात सुनते नहीं है। फिर बाबा जी महाराज फिर दूसरे एक सेवक को बोलते हैं देखो माया किस तरह से कार्य करती है, वो आपको कभी कृष्ण की सेवा नहीं करने देती। देखो माया किस तरह से बोल रही है, चलो चलो कमरे में चलो, सांप काट देगा, ये प्रसाद मत लेना, इसमें जहर है, अगर जहर लेके मर भी जाओ तो अच्छा है, ऐसे जीने का क्या फायदा जाओ अगर मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊं तो। बाबा जी महाराज कहते तो बाबा जी महाराज की बात सुनते नहीं है, बोलते ठीक है जाओ जाओ मुझे भजन करने दो। तो ये उनका वैराग था, मतलब भजन का प्रभाव था कि वो रंच मात्र माया के प्रभाव में नहीं आते थे। तो एक बार बहुत सारी घटना है, इसमें बहुत सारे स्टोरीज लिखे हुए हैं, अष्टकाली लीला। तो एक बार एक व्यक्ति आए, सो कॉल्ड गोस्वामी, तथाकथित गोस्वामी, इस तरह से बहुत सारे रहते थे, मतलब बड़ा ही इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि उन दिनों में भी, यानी कि 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900s में या लेट 1800s में भी ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिल रही है। नवदीप धाम में भी इस प्रकार होता था, वेरी सरप्राइजिंग। तो ये जो एक गोस्वामी तथाकथित गोस्वामी थे बाबा जी महाराज के पास आए और बोले कि बाबा जी महाराज मैं अष्टकाली लीला के बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ, राधा कृष्ण की जो अष्टकाली लीला है, 8-fold पास्ट टाइम्स है, उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। बाबा जी महाराज ने कहा ठीक है बाद में, अभी नहीं। तो बाबा जी महाराज के बाद एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, चार बार आए, उन्होंने कहा कि क्या कारण है ये बाबरी महाराज मुझे कुछ सुनाते नहीं है और अंत में आने और संबंध कर दिए, परेशान होकर क्योंकि बाबरी महाराज कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो बाबा जी महाराज एक दिन रात्रि को 10 बजे स्वयं खुद ही अपने आप बोल रहे थे, बोलते हैं कि जो चंद सिखों के ना पाने पर ही जो परेशान हो जाता है वो क्या अष्टकाली विद्या को समझेगा। थोड़े से पैसे अगर गुम हो गए, 5-10 सिक्के, उसी में व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो अष्टकाली विद्या को क्या समझेगा। तो बोलते हैं कि वो बाबा जी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं 2 मंजिल 3 मंजिल की, और बिल्डिंग के ऊपर जाके क्या करते हैं, मल त्यागते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि इसलिए लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं अष्टकाली लीला की, लेकिन वास्तव में बिल्कुल भी विरक्त नहीं है संसार से, देहात्म बुद्धि से अभी तक ऊपर नहीं उठे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, असत्संग को त्याग करना चाहिए और भक्तों के संग में रहकर संकीर्तन करना चाहिए, दिन रात हरिनाम लेना चाहिए, नहीं तो ये अष्टकाली लीला को क्या समझे। तो इस प्रकार बाबा जी महाराज ये बताते थे। और एक बार क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद एक गिरीश बाबू करके आए, और वो वास्तव में जब पहुंचे वहां पर, जो कि एक जिनकी एक धर्मशाला थी नवद्वीप में, और वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ पर एक भजन कुटीर बनाना चाहता हूँ, और मेरी लेकिन इच्छा है कि आप अपने लिए भजन कुटीर बनाए। मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ रहते हैं, बारिश के दिनों में बड़ी दिक्कत होती होगी आपको, गर्मी भी इतनी पड़ती है, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर भजन कुटीर बना दूंगा और उसमें आप बड़े आराम से भजन कर सकते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी कुटिया की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसके लिए आप तंग मत करो। कई लोग मेरे पास आते हैं, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, मेरे पास आते हैं और मुझे भजन नहीं करने देते हैं, मुझे पूजा करने नहीं देते हैं। अगर आप वास्तव में मेरी सहायता करना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे अपना मल दे दो, प्लीज गिव मी योर स्टूल। बाबा जी महाराज कहते हैं उससे, क्या बात बोल रहे, बोलते प्लीज गिव मी योर स्टूल, उस मल को मैं यहाँ रखूंगा तब मेरे पास कोई नहीं आएगा मुझे धन करने के लिए, भजन में जो है बाधा डालते। तो एक लोग आते बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे भजन नहीं करने देते। अच्छा देना ही है तुम्हें को, तुम अपना मल दे दो, स्टूल दे दो, मैं यहाँ रखता हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे जब। तो बाबा जी महाराज से कहते हैं, तो फिर तो बाबा जी महाराज की जो गिरीश बाबू की जो पत्नी थी उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज अगर वास्तव में हम स्टूल यहाँ रखेंगे, मल यहाँ पे रखेंगे अपना, आपके कहने पर रख तो देंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, आप तो इतने उच्च कोटि के वैष्णव। बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, जो भक्त होते हैं वो तो बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं, मैं तो यहाँ सड़क में रहता हूँ। और फिर बोलते हैं कि भक्त वो है जिनकी लंबी लंबी जटाएं होती हैं, और मैं तो एक जो है सड़क छाप व्यक्ति हूँ, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, तो इसलिए कि मुझे आप केवल ऐसा स्थान दे दो जहाँ पर आपने मल त्यागा हो, अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे और कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है आपसे, आप जा सकते हैं। तो वो लोग बेचारे बहुत परेशान हुए, कहा ठीक है। तो वो फिर उन्होंने फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब आपके लिए अगर आप नहीं चाहते तो आपके सेवकों के लिए हम यहाँ कुटिया बना देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो यानी कि वो कहना चाह रहे थे, बाबा जी महाराज ये बताना चाह रहे थे, बाबा जी महाराज जब वास्तव में जब एक्चुअली लैट्रिन में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने कोलद्वीप में, अंदाजा लगाइए बाबा जी महाराज का रेनाउंसिएशन क्या था उनका डिटैचमेंट, तो एक्चुअली उन्हें लैट्रिन में शुरू कर दिया। और बाबा जी महाराज क्या कहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में ये जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, लोग जो धन के पीछे भागते हैं, यश के लिए पीछे भागते हैं, तो उसकी जो गंध है, दुर्गंध है, इस मल से भी ज्यादा खराब है। यानी कि इस पब्लिक लैट्रिन में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों का मुझे संग नहीं करना है जो केवल लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो बाबा जी महाराज का डिटैचमेंट देखिए, और ये वास्तव में परीक्षा है। अगर कोई कहता है मुझे नाम में बहुत रुचि है, मैं वृंदावन धाम में जाकर राधापुर में जाकर भजन करना चाहता हूँ, तो परीक्षा ये देनी चाहिए कि उसको बोले कि आप पब्लिक लैट्रिन में जाके रहो और वहाँ हरिनाम लो सुबह से रात तक 1 महीने के लिए, आप राधापुर में रहने के लिए अधिकारी। तो बाबा जी एक्चुअली क्योंकि बाबा जी महाराज प्रैक्टिकली रह रहे थे पब्लिक लैट्रिन में, इसलिए कोई वहां पर भटकता नहीं था उनके पास। तो ये उनका जो है बेसिकली डिटैचमेंट था। और भी क्या है देखने का इसमें, और बहुत सारी घटनाएं हैं। मणिचंद्र नंदी, तो ये भी एक बहुत बड़े घराने व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे, जो नवदीप धाम में आए थे, और तो उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज से कहा कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं आपके संग चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप कुछ समय के लिए हमारे निवास स्थान में आके रहें। बाबा जी महाराज से अनुरोध किया तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि ऐसा करो, सबसे पहले आप सब कुछ त्याग कर, अपनी जमीन ज्यादा त्याग कर, अपना घर त्याग कर, परिवार त्याग कर, आप आ जाओ मेरे पास गंगा जी के तट पर, यहाँ भजन कुटीर बनाओ और दिन रात भजन करो। खाने पीने की चिंता ना करना, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, कुछ ना कुछ लाके मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें क्या करना है, भजन कुटीर बनाकर यहाँ पर दिन रात भजन करना है, इस तरह से जो है मैं बचा रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात अगर सुन लूंगा और तुम्हारे साथ में जाऊंगा तो क्या होगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा धन इस सब का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, मेरी चेतना जो है शुद्ध हो जाएगी, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगर तुम वास्तव में साधु संत चाहते हो तो आओ चैतन्य महापुरु के धाम में आओ, श्रीधाम मायापुर में गंगा जी के तट पर भजन कुटीर बनाओ और दिन रात भजन करो। तो मणि चंद्र दोबारा कभी नहीं आया बाबा जी महाराज के बाद, तो तेजी भाग गया वहां से फिर। तो इस तरह से जो है मतलब एक्चुअली बाबा जी महाराज किसी भी थोड़ा सा भी अगर फेक होता था किसी का मोटिव, उसको स्वीकार नहीं करते थे बाबा जी महाराज, और केवल जेन्युइन जो डिवोटीज हैं उन्हीं को ही बाबा जी महाराज एंटरटेन करते थे। तो एक बार ऐसे एक और धोखेबाज था जिसका नाम था श्याम, तो ये भाग के वेश में आया था और बाबा जी महाराज से बार बार मिलने की इच्छा कर रहा था। तो बाबा जी महाराज जो है उससे मिलना नहीं चाह रहे थे और बार बार उसको बोल रहे थे नहीं नहीं जाओ जाओ, वो परेशान हो गया। तो वो काफी इन्वेस्ट लगाने का कोशिश किया उसने, और श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर के पास गया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं बाबा जी महाराज से मिलना चाह रहा हूँ और वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते, आप प्लीज रिकमेंड करिए ना मेरा नाम ताकि मैं उनसे मिल सकूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज गए उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि एक श्याम नाम का कोई भक्त है, बड़ा अच्छा भक्त है, आप उनसे मिल लीजिए, बाबा जी महाराज वो आपकी कृपा चाहते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं, बाबा जी महाराज अपनी चरण धूलि लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज के सर पर रखते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हो, तुम नित्यानंद प्रभु के बहुत घनिष्ठ भक्त हो, घनिष्ठ सेवक हो, और ये अच्छा शोभा नहीं देता है कि तुम ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हो मुझे मेरे पास आने के लिए, है ना। ये वास्तव में ठीक है, हमें जीवात्माओं के ऊपर उद्धार करना है, लेकिन ये वास्तव में तो पूरा कपटी है, ये पूरा धोखेबाज है, और इसके लिए तुम जो है मुझे बता रहे हो कि मैं इससे मिलो। तो भक्तिदास महाराज को बताते हैं, तो ये शाम जो है बहुत बार प्रयास करता है और बाबा जी महाराज जब नहीं मिलते हैं तो एक दिन क्या करता है, ह्यूमन स्कल खोपड़ी लेकर, एक मनुष्य की खोपड़ी लेकर, ह्यूमन स्कल लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज के पास आता है और उसको पानी डालकर उसमें से पीता है और बोलता है देखिए ये है मेरा विराग, बाबा जी महाराज मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो ह्यूमन स्कल में पानी डालकर कभी पी सकते हैं, मैं आपके सामने पी के दिखा रहा हूं। तो जैसे ही ये बोलते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज के सामने, वो शाम बोलता है इस तरह से ऑफेंसिव स्टेटमेंट देता है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत हैवी हो जाते हैं, वो बोलते हैं यू रास्कल लीव इमीडिएटली, ये स्थान छोड़ के चले जा, व्हाई यू आर स्पीकिंग सच हेटफुल वर्ड्स अबाउट माय स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर अ डेमन एंड एथिस्ट, देयरफॉर यू हैव नो टेस्ट फॉर एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, यू विल डेफिनेटली डिसेंड टू द हेलिश प्लैनेटरी सिस्टम। तो बोलते हैं तुम जो है मेरे गुरु के लिए ऐसे अपशब्द कह रहे हो तो मैं नर्क में जाना पड़ेगा, तुम दुष्ट हो, तुम राक्षस हो, निकलो यहां से, तुम्हें थाम रहने का कोई अधिकार नहीं। तो इस तरह जो है वो श्याम जो है वहां से चला जाता है क्योंकि बाबा जी महाराज उसको अपना संग देते नहीं है। तो एक बार ऐसे ही कोई आता है, एक भक्त आता है और नवदीप धाम में एक कोई विद्वान गोस्वामी होता है, उनका जो लड़का है वो नवदीप धाम में जो है दशम स्कंद से कथा कर रहा होता है नवदीप भ्रमर गीत के ऊपर, तो उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही होती है नवदीप में, दशम स्कंद से भ्रमर गीत के बारे में कहा जा रहा है, तो भ्रमर गीत के बारे में। तो फिर वहां के कुछ भक्त लोग बताते बाबा जी महाराज से कि बाबा जी महाराज बड़ा अच्छा लगा और भ्रमर गीत से वहां चर्चा हो रही है, और कई भक्त जो है भावावेश में रोते हैं वहां पर, एक्सेसी में आ जाते हैं, कंपन होता है उनका ये कथा सुनकर, राधाणी ने किस तरह से एक भ्रमर से बातचीत की। तो ये हम लीला सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है बाबा जी महाराज से कहते। तो बाबा जी महाराज कहते हैं अगर आप वास्तव में आपका भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर वास्तव में अनर्थों से निवृत्त होना चाहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं, तो आज ही वहां कथा सुनना बंद कर दो, दोबारा कभी वो भ्रमर गीत सुनने मन सा ना कभी। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि भगवत प्रेम ऐसे नहीं प्राप्त होता है दिखावे से। अगर वास्तव में तुम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हो और भ्रमर गीत सुनने के अधिकारी बनना चाहते हो तो जाओ, भक्तों के संग में जाओ और खूब संकीर्तन करो। संकीर्तन करोगे तभी तुम्हें भ्रमर गीत सुनने का अधिकार प्राप्त होगा, ऐसे नहीं प्राप्त होगा। बोलते हैं कि बाबा जी महाराज बहुत दुखी होते हैं, बोलते हैं आजकल तो क्या हो गया कि एक फैशन सा हो गया है कि लोग जो है कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं, दशम स्कंध से अध्ययन कर लेते हैं या राधा कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हम उसी स्तर पर पहुंच गए हैं। बोलते हैं कि सिद्ध देह कहाँ से प्राप्त होगा, स्पिरिचुअल फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा, इस तरह से दिखावा करने से। तो बाबा जी महाराज बहुत दुखी होते हैं कि इस तरह से जो लोग जो है दिखावा करते हैं। अगर वास्तव में तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो भक्ति के मार्ग में तो आओ मेरे साथ, भक्तों के संग में रहो, गंगा जी के तट पर भजन कुटीर बनाओ, महापुरुष की शरण लो, दिन रात संकीर्तन करो। और एक फिर एक और बार क्या होता है, एक जमींदार जिसका नाम होता है सहा, तो वो क्या करते हैं, सहा साहब क्या करते हैं, बाबा जी महाराज के लिए रोज चावल भेजते हैं और बाबा जी महाराज के लिए वो चावल भेजते रहे, काफी समय तक भेजते रहे। और ये लेकिन चावल वो कहां से लेते थे, उसी रानी से लेते थे जिसने चावल का गोदाम बनाया हुआ था। अब वो चावल रोज भेजा करते थे, ऐसे दो महीने तक बाबा जी महाराज को चावल भेज रहे। तो बाबा जी महाराज ने फिर एक दिन क्या किया, वो चावल लेना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा बाबा जी महाराज ये क्या, आपने चावल लेना क्यों बंद कर दिया, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या, मैंने कोई अपराध कर दिया तो बताइए, लेकिन आप चावल लेना क्यों बंद कर दिया आपने। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं पाला गुरु नहीं बनना चाहता, पाला गोरु नहीं बनना चाहता हूं। पाला गोरु का मतलब होता है कि पालतू पशु नहीं बनना चाहता हूं, कि पशु जो हो जाता है, जब कोई पशु जो भी किसी घर में बांध के रखा जाता है तो वो वास्तव में पालतू होता है और वो पूरी तरह से निर्भर होता है उस घर के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक ही जगह से भोजन प्राप्त करूं और मैं जो है पालतू पशु बन जाऊं तुम्हारा। तो बाबा जी महाराज कहते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है पाला गोरु और दूसरा होता है धर्मेर सांड। तो ये धर्मेर सांड मतलब क्या है कि सांड जो है वो ये धार्मिक है लेकिन क्या करता है, एक जगह नहीं रहता है, वो जगह जगह जाता है और जगह जगह जाके मधुकरी करता है। और इस तरह से वो क्या है, धर्म का कोई प्रचार नहीं करता है, कृष्ण कथा नहीं करता है, लेकिन जगह जगह के जाके क्या करता है, केवल अपना पेट का पोषण करता है, पेट भरण करता है। तो इस तरह से तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि ना मैं पालक गुरु बनना चाहता हूँ ना धर्मेंद्र सांड बनना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है वो धर्मेंद्र सांड जो है वो सांड को भी अगर एक जगह बांध के रख दिया जाता है तो वो भी फिर क्या होता है, पालक गुरु बन जाता है। यानी कि अगर मुझे एक जगह खड़ा करके रख दोगे और मैं तुम्हारा भोजन लेते रहूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं आज से तुम्हारा ये भोजन नहीं ले सकता हूँ। तो इस तरह से बाबा जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो मधुकरी की जाती है वो की जाती है परमहंसों के द्वारा, जो देहात्म बुद्धि से ऊपर है, जो गुणों से ऊपर है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं पड़ता है वही वास्तव में मधुकरी कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा जी महाराज अनेक लोगों को शिक्षा देते थे नवदीप धाम में रहते हुए। तो बाबा जी महाराज जब नवदीप में, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं बताई गई हैं और उनके तिरुभाव के बारे में थोड़ा आपसे बताना चाह रहे हैं। 1914 यानी कि कार्तिक में उत्थान एकादशी के दिन जब बाबा जी महाराज ने ये देह का त्याग किया था और नित्य लीला में, राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश किए थे, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर कुलिया ग्राम गए थे मायापुर से, जब उनको पता चला कि बाबा जी महाराज का तिरुभाव हो गया है। तो उस समय कई लोग कई मंदिरों से, कई गोस्वामी और कई जैसे तथाकथित बाबा जी वहां पहुंचे थे और वो लोग विचार कर रहे थे कि बाबा जी महाराज के शरीर का क्या किया जाए, क्योंकि हमने सुना था बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं जब देह त्याग दूं तो मुझे क्या करना, नवदीप की सड़कों में आप मुझे घसीटते हुए ले जाए, ऐसा बाबा जी महाराज ने कहा तो हम यही करें। तो उनके ये विचार थे। तो वो सब जो ऐसे सोच रहे थे तो उसी समय भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि कोई इनके शरीर को नहीं छुएगा, क्योंकि उन सबको क्या लगा कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस समय क्योंकि सन्यासी नहीं थे 1914 में, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी है सन्यासी नहीं है तो ये तो उनका जो है अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, समाधि नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग तो जो है सब विरक्त हैं, बाबा जी वेश लिया हुआ है तो हम यही करेंगे कार्य। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज वहां पर पहुंचते हैं और वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर भी पहुंचता है, उस एरिया का जो कमिश्नर है वो भी वहां पहुंच जाता है। तो बोलते हैं कि भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं हाँ ठीक बात है कि मैं सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूं, मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। तो इस तरह से भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं। तो फिर वो फिर उसके बाद कहते हैं कि लेकिन मैंने मर्कट वैराग नहीं लिया है। फिर उसके बाद जो है वो एक चैलेंज करते हैं सबको कि अगर आप मेरे गुरुदेव, क्योंकि मैं ही एकमात्र शिष्य हूं अपने गुरुदेव का, और कोई शिष्य नहीं है, इसलिए मेरा पूरा अधिकार बनता है मुझे कि मैं ही एक संस्कार करूं। फिर वो चैलेंज करते हैं उनको कि अगर पिछले एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में और पिछले 3 दिन में अगर किसी ने अगर अवैध संबंध नहीं रखा है तो मेरे गुरुदेव का शरीर को छू सकता है। लेकिन जानते क्या हुआ, वो जितने भी वहां तथाकथित जो आए थे, बाबा जी आए थे, वो बिल्कुल चुप हो गए। इस मामले में कम से कम ऑनेस्ट थे, मौन व्रत रखा। और एक्चुअली क्या हुआ, वो पुलिस वाला क्या बोला, उसने बोला लेकिन इससे ये साबित कैसे होगा, आपने स्टेटमेंट तो दे दिया बहुत हैवी, लेकिन ये सबूत कैसे मिलेगा, प्रूफ कैसे होगा कि इन्होंने किया कि नहीं किया। बोलते हैं जो ये बोलेंगे मैं मान लूंगा, स्वीकार करूंगा। तो बाबा जी जब उन सबको तो तथाकथित जो बाबा जी थे वहां पर, उन्होंने जो भी बात सुनी, इतनी हैवी बात सुनी, तो वो सब चुप रह गए, मौन व्रत रखा उन्होंने, कुछ बोले नहीं और चुपचाप वहां से सब निकल। और भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने अपने गुरुदेव का शरीर उठाया और कुलिया ग्राम में ही वहां पे उनकी समाधि बनाई। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कई ऐसे जो ढोंगी लोग हैं और तथाकथित जो बाबा जी हैं वहां के रहने लगे, और वो इलाके में ऐसा भी हो गया कि बेसिकली कमर्शलाइज सा हो गया, और लोगों का ये था, विश्वास था, विचार ये था उन लोगों का कि समाधि में जाएंगे और वहां रहकर हम खूब धन कमा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, बाबा जी महाराज पूरे नवदीप में बड़े फेमस हैं, तो नेचुरली बहुत लोग इनके पास आएंगे यहाँ पर डोनेशन देने के लिए इनकी समाधि में, तो उसका लाभ हम लोग उठाएंगे, ये उनका विचार था। तो गंगा जी की बड़ी कृपा हुई और गंगा जी का प्रभाव बढ़ गया और वहां फ्लड आ गया, क्योंकि नवदीप में फ्लड बहुत आता है कई बार, तो वहां पर गंगा जी का प्रभाव बढ़ गया और गंगा जी के कारण जो है समाधि भी लगभग आधी डूब गई थी और इस कारण से काफी कुछ नुकसान हुआ था। तो बाद में श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर बाद में कई दिनों के बाद गए और उन्हें क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर समाधि को रखना ठीक नहीं है, तो समाधि को स्वयं उन्होंने कुलिया ग्राम से कोलक द्वीप से वो मायापुर लेकर आ गए और मायापुर में अपने ही मंदिर में चैतन्य मठ में बाबा जी महाराज की समाधि को पुनः स्थापित किया। तो इस तरह से ये 1914 में श्रील बाबा जी महाराज जो है उन्होंने अंत नित्य लीला में प्रवेश किया, राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया। बाबा जी महाराज जो है वो गुणमंजरी है, गुणमंजरी ब्रज लीला में राधारानी की सेवा में हमेशा व्रत रहते हैं गुणमंजरी। और इस तरह से बहुत सारी घटना है, बहुत सारी कथा है, इसमें कहने को तो हम यहीं पर विराम देंगे, किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं इनके बारे में। दीक्षा का हमने बताया था, दीक्षा का आपको बताया था बाबा जी महाराज किस तरह से श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरजी ठाकुर को दीक्षा दी थी। जब वो गए थे तो पहली बार उनको ये बोला था कि मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा, दूसरी बार जब गए तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से पूछा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, तीसरी बार जब गए तो उन्होंने कहा कि हाँ महाप्रभु ने ये कहा मुझे कि वास्तव में भौतिक विद्वता के द्वारा, मेटीरियल एकेडमिक एजुकेशन के द्वारा और मंडेन मोरालिटी के द्वारा हम कभी भी जो है कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते हैं और कृष्ण भक्ति के सामने तो ये सब तुच्छ है। तो ऐसे जब बाबा जी मारेगा तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज बहुत ज़्यादा डिटेक्टेड हुए, डिस्करेज हुए, उन्होंने कहा ठीक है फिर मेरे लिए तो यही है कि मुझे तो आप शरीर छोड़ देना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए अगर आप मुझे अब दीक्षा नहीं देते। तो उसके बाद बाबा जी महाराज का हृदय पिघला और उन्होंने फिर दीक्षा दी। स्वानंद सुखद को 1900 जनवरी 1 को बाबा जी महाराज से दीक्षा ली थी। और श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर को उन्होंने 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे बाबा जी महाराज ने कि आप कलकत्ता मत जाना, प्रचार मत करना, और भी कुछ बोला था, 3 चीजें बताई थी। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज लेकिन तीनों का तीनों किया। आप कोई बोलेगा कि ऐसे कैसे, वो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से श्रीपाद रामाचार्य को उनके गुरुदेव ने कहा मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया है इसका उच्चारण जोर से मत करना, तो श्रीपाद रामाचार्य कहाँ चले गए, रंगनाथ मंदिर के ऊपर चले गए और गोपुरम में चढ़ के जोर जोर से चिल्लाए और भगवान के नामों का उच्चारण किया। उनके गुरुदेव ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हें पता है नर्क जाना पड़ेगा, अब क्या किया तूने, उन्होंने कहा अगर मैं नर्क जाने के लिए तैयार हूँ अगर इन सब जीवात्मा का उद्धार हो जाता है तो भी गुरुदेव कहते हैं मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इसी तरह से बाबा जी महाराज भी इनकी परीक्षा ले रहे थे। तो कलकत्ता जाने का मतलब है कलकत्ता शहर जो माया के प्रभाव में वहां नहीं जाना है, लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या किया, मंदिरों की स्थापना की और एक भक्तों का बहुत बड़ा समूह वहां पर बनाया और भक्तों की संगति में रहकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाया। और उनका उद्देश्य वहां पर जाकर इंद्र तृप्ति नहीं करना था बल्कि कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में। हाँ, उनको कहीं भी कहा था बाबा जी महाराज के शिष्य मत बनाओ, लेकिन शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इतने शिष्य बनाए, बहुत शिष्य बनाए उन्होंने। तो उसका भी एक अर्थ यह है कि उन्होंने शिष्य जो है अपने इंद्र तृप्ति के नहीं बनाया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाया, बल्कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके उनके शिष्य उन्होंने शिष्य बनाए। और इस तरह से वो कलकत्ता आए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माय गुरु महाराज वो डांसिंग इन एक्सटेसी इन द मिड्स ऑफ पंचतत्व, बट वन डे ही लेफ्ट द एसोसिएशन ऑफ पंचतत्व, ही वेंट टू कलकत्ता टू स्टार्ट द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन द ईयर 1918 में जो संन्यास लिया था तभी वो कलकत्ता भी गए थे। और कलकत्ता में उन्होंने महावीर मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर मायापुर में है श्री चैतन्य मठ है जो उनका हेडक्वार्टर्स है। तो इस तरह देखिए बाबा जी महाराज के, बाबा जी महाराज हालांकि भजन नहीं थे लेकिन उनके एक शिष्य जो थे वो सबसे बड़े गोष्ठानी थे। उनसे बड़ा तो गोष्ठानी कोई हुआ नहीं। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी वो है ही सबसे बड़े गोष्ठानी, लेकिन प्रभुपाद जी उनके शिष्य हैं। तो भक्ति सिद्धा सर ठाकुर जो है इतने बड़े गोष्ठानंदी जिनके माध्यम से प्रभुपाद जी ने आज पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। तो ऐसे जो बाबा जी हैं जो वास्तव में नवदीप में रहते हैं, जो वास्तव में भजन करते हैं, वो गोष्ठानंदी होते हैं। भजनानंदी होते हुए भी वो गोष्ठानंदी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भजन से क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में ये शुद्ध नाम जो है उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। जैसे कि ध्रुव महाराज की कथा में देखिए कि ध्रुव महाराज मधुबन में रहकर एक जगह रहकर उन्होंने भजन किया। और प्रभुपाद जी परकोट में लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के भजन का इतना प्रभाव पड़ा कि तीनों लोकों में जो देवी देवता थे उनके सांस घुटने लगा, उनका सांस घुटने लगा, वो ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे थे। और उनकी जो भावना थी कृष्ण भावना का जो प्रभाव है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। एक जगह पर खड़े होकर भजन करने का प्रभाव, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। तो इसी तरह से हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ये जो गोस्वामी हुए, छह गोस्वामी हुए, या बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए, या गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज हुए, जो एक्चुअली बाबा जी थे, परमहंस थे, जो उन्होंने भजन किया नवदी धाम में, उनके भजन के प्रभाव से ही वास्तव में आज हम कृष्ण भावना के आंदोलन में आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भजन किया, उन्होंने जो नाम का उच्चारण किया पृथ्वी में आकर, वो जो नाम का उच्चारण जब किया तो पूरे ब्रह्मांड में जो है उस नाम का प्रभाव पड़ा। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली भी साउंड वाइब्रेशन जो है मेटीरियल लेवल पर भी 7 बार एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है। कुछ भी आप बोलते हैं ना, तो इसका जो साउंड कभी जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने ये पता लगाया था कुरुक्षेत्र के बारे में, वहाँ के जो साउंड वेव्स हैं उसको स्टडी किया और अभी वो जो साउंड सुन पाए अभी तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, युद्ध करने के जितने भी साउंड है, तलवार फेंक तलवार से मारने की या जो लड़ने की घोड़ों की आवाज, वो सब सुनाई दे रही है। तो यानी कि 5000 वर्ष जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, वो जो साउंड जो बेसिकली साउंड वेव्स है जो एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं है, उस साउंड वेव्स को कैच करने का प्रयास किया गया और उस साउंड को सुन पा रहे। तो ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि साउंड जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली इसीलिए, और ये तो मेटीरियल साउंड की बात, तो स्पिरिचुअल साउंड तो सोच लीजिए कभी भी नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। और हरिनाम जो शुद्ध नाम का कोई उच्चारण करता है, ऐसा हरिनाम तो भगवान के स्वयं, भगवान के स्वरूप से, भगवान के धाम से अभिन्न है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं इस नाम के द्वारा लाभान्वित होते हैं, सबको जो है सुकृति प्राप्त होती है, स्पिरिचुअल मेरिट प्राप्त होता है। और इसी कारण से उस सुकृति के कारण, उस अज्ञात सुकृति के कारण ही आज हम इस समय इस कृष्ण भावना के आंदोलन में प्रवेश कर पाए हैं इनके भजन के प्रभाव से। इसलिए कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं इसलिए प्रचार हो रहा है। ये बहुत बड़ा मोह है, बहुत बड़ी माया है। ये अगर प्रचार जो हो पा रहा है इन सभी वैष्णव आचार्यों की कृपा की वजह से हो रहा है। और ये केवल एक इमेजिनेशन नहीं है, ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है। क्योंकि इन आचार्यों ने, इन शुद्ध भक्तों ने आकर इस धराधाम में, इस पृथ्वी में आकर प्रचार किया, भजन किया खुद स्वयं। इनके भजन के प्रभाव के कारण ये आज पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में प्रचार हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें गौरकिशोर बाबा जी महाराज जो है, ये एक्चुअल वास्तव में परमहंस वैष्णव थे। एक बार क्या हुआ कि बाबा जी महाराज से कहा कि बाबा जी महाराज जो है कोई फेस्टिवल था, कौन सा फेस्टिवल था वो, बाबा जी महाराज से कहा कि गौर पूर्णिमा का तो फेस्टिवल नहीं, कोई फेस्टिवल था, तो बाबा जी महाराज से भक्तों ने कहा कि बाबा जी महाराज ये फेस्टिवल है, हम सब जो है फीस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो कैसे फीस्ट ऑर्गेनाइज करें, हमें पता नहीं चल रहा कहाँ से हम क्या क्या खरीदें, क्या क्या आइटम होने चाहिए। तो बाबा जी महाराज कहते हैं कि हाँ, हम ये जरूर सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल, और ये सेलिब्रेशन कैसा होगा, हम पूरे दिन फास्ट करेंगे और पूरे दिन महामंत्र का जप करेंगे, ये है हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका। तो ये परमहंस लोग इस तरह से, परमहंस जो है होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो इस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हरे कृष्ण। बीच पंचक के बारे में इतना जानकारी है नहीं मुझे, सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि बीच पंचक में जैसे प्रभु जी ने बताया सुबह सुबह, अधिक से अधिक हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, और 5 दिन जो है खासकर कम खाएं कम सोएं, है ना। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद हमने सुना है कि भीमा निर्जल एकादशी जो की जाती है, उस एकादशी का व्रत रखने से जितनी भी एकादशी है उस सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है, तो प्रभुपाद ने कहा यस, वेदर इज भीमा और अर्जुना यू मस्ट फास्ट। प्रभुपाद ने कहा भीम हो या अर्जुन हो, कोई भी एकादशी हो, यू मस्ट फास्ट, क्योंकि एकादशी मेंट फॉर फास्टिंग। प्रभुपाद ने कहा हाँ, अगर आप फास्ट पूरे टोटल फास्ट नहीं कर सकते हैं तो प्रभुपाद ने कहा थोड़ा फल ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। तो लेकिन प्रभुपाद साथ में ये कह रहे हैं कि, फिर किसी ने कहा कि प्रभुपाद हमें कभी आपने कहा था कि जो बेसिकली महाप्रसाद जो ग्रहण करना है वो भी फास्टिंग है, तो प्रभुपाद ने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि महाप्रसाद ग्रहण करना भी फास्टिंग है। प्रभुपाद ने कहा मैंने ये कहा था कि एकादशी में अगर कोई सेवा मतलब करना चाहता है, सेवा में अगर कोई बाधा आ रही है तो फिर अच्छा है ये कि थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लें और सेवा करें, क्योंकि सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बीमा हो या भीष्म पंचक हो, तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद फिर कहते हैं उस शिष्य को कहते हैं लेकिन सोना नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं डोंट स्लीप, कि हम इतना फास्टिंग कर लें और पता चला कि लेटे ही हुए हैं तो अच्छा है कि थोड़ा सा प्रसाद लेके हम लोग सेवा ज्यादा करें, वो ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से गुरु महाराज के समय भी ऐसे हुआ था कि मंदिर में क्या हुआ, कई शिष्य लोगों ने निर्जला रखे हुए थे, सोए हुए थे, तो भक्ति से हमारे देख लिया कि सब सो रहे हैं, तो उन्होंने कहा इनको खूब प्रसाद खिलाओ और उनको प्रचार में भेजो। तो इसलिए सेवा का बड़ा महत्व है, सेवा सबसे जरूरी है। तो बीच पंचक में अगर हम लोग अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन कर सकते हैं अगर, और खूब सेवा कर सकते हैं, तो फिर तो फास्ट करिए, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। एक भजन सुना दे, बजाए मृदंग। हरे
पद छया शोभो हे राम
पाए बार हरि नामा
प्रभुपाद की
जय। मोहन बाबू जी की।